आप सभी इस नुमा शाम के समय एक नई यात्रा से जुड़ने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आ रहे हैं राजयोगिनी गोपी दीदी जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कृपया डेस्क पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में राजयोगिनी अश्मिता बहन, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, हम अपनी आगे की यात्रा को आरंभ करें। कोई भी कार्य की शुरुआत अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो उनमें इस विश्व नियंता परमात्मा को अगर आप शामिल कर ले तो वो कार्य आपका जरूर से अच्छा और संपन्न होता है। तो आइए हम 2 मिनट प्रभु के संग हो ले। आप जब से इस कैंपस में आए हैं शांति का अनुभव तो आप करते ही होंगे, लेकिन जब यह गीत बजता है तब भी अनुभव होता है कि रोम रोम में शांति जैसे समा जाती है। आप सभी कभी बड़े बड़े पार्टीज आदि में जाते हैं, बड़े अलग अलग प्रकार के खाने व्यंजन आदि वहां रखे हुए होते हैं और बहुत मनभावन वैराइटीज भी होती है, लेकिन समझो उसके पहले अगर किसी मित्र के साथ आपकी अनबन हो जाए तो आपको भोजन का स्वाद आएगा? आएगा? आप क्या कहेंगे? उससे बेटर है कि शांति से रोटी अगर मैं घर में ही खा लेता तो अच्छा था। तो आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं? शांति को, पीस को। शांति हमारे अविभाज्य अंग हमारे जीवन का है, जिनको हम कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन इस विषय को आज हमारी प्यारी दीदी गोपी दीदी जी स्पष्ट करने आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। वैसे गोपी बहन तो हम बहनों की भी बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट वो अपने हाथ में पकड़ती हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। जैसे गरम गरम हलवा गले से नीचे उतर जाता है, चबाना नहीं पड़ता, उसी प्रकार वो अपने मनोमंथन से ऐसे अच्छे से हमें समझाती है कि बात दिल को जच जाती है। आप हैं इंटरनेशनल स्पीकर हैं, आप लंदन में रहती हो ज्यादा समय, बाकी 42 साल से आप इस विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। आप एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे यहाँ आप ज्ञान सरोवर आए हैं, पांडव भवन भी हमारा एक कैंपस है, नीचे शांतिवन भी कैंपस है। उन तीनों स्थान पर आप सेफ्टी और साथ में हेल्थ दोनों के बारे में आप कोऑर्डिनेट करती रहती हैं। साथ में आप इंटरनेशनल यूथ फोरम के भी कोऑर्डिनेटर हैं और यंग एडल्ट को आप अच्छी ट्रेनिंग देकर उन्हें स्पिरिचुअल रूप से एम्पावरमेंट करती हैं। आप 49 कंट्रीज में जाकर के अपनी स्पिरिचुअल सेवाएं देती हैं। ऐसी हमारी विशेष स्पीकर वक्ता गोपी दीदी जी।
ओम शांति। पहले तो मैं आप सभी को बहुत थैंक्स देती हूं कि आप लोगों ने टाइम निकाल के यहां आया। खुद को टाइम देना, अभी तो हम जैसे प्रायोरिटी लिस्ट होता है ना, तो सेल्फ बिल्कुल एट द बॉटम होता है। और आपने जो जिसको खुद को टाइम दे करके सेल्फ में एक इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट का आपको आगे चल करके बहुत फायदा मिलने वाला है। एक लाइफ में क्लैरिटी बनती है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है। और वर्तमान समय अनुसार जो हम दुनिया की परिस्थिति देखते हैं, एवरीथिंग इज अनसर्टेन, अनस्टेबल और अचानक। अभी तो कंपनीज देख, जो 5 साल का प्लानिंग करते थे, अभी मस्त मस्त 1 साल का प्लानिंग हो सकता है, राइट? तो ऐसे माहौल में, खुद की मानसिक अवस्था में, खुद की स्पिरिचुअल अवस्था में इन्वेस्टमेंट देना इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। तो मैंने आज का विषय जब पढ़ा, साइंस ऑफ मेडिटेशन, तो मन में यही संकल्प उठा कि इज इट रियली अ साइंस और इज इट अ वे ऑफ लाइफ। एक जीवन जीने की कला जो हमारे पास थी, विश्वास के आधार से, शांति से काम लेना, प्यार भरी भावना से व्यवहार करना, वो हमारी हिस्ट्री में है। इसीलिए भारत में स्वर्ग था। कहां गया वो? हाउ डिड वी लूज दैट एंशिएंट कल्चर, जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे संस्कार में है। और वर्तमान समय, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लीडिंग। तो हम कहेंगे कि विद्धि होती है, मेथडोलॉजी होती है मेडिटेशन में, और विद्धि के आधार से सिद्धि प्राप्त होती है। और हमारे राजयोग में तीन लेवल्स होते हैं। एक है ऑल चेंज बिगिन्स विथ चेंज ऑफ स्मृति अवेयरनेस, जो आप शायद अवेयरनेस शब्द यूज करेंगे या कॉन्शियसनेस शब्द यूज करेंगे, लेकिन अवेयरनेस की स्विच ऑन हो जाती है तो आपका संसार बदलता है। Whatever you are aware of, it starts to inform your perception, how you perceive something. आप किस दृष्टिकोण से कुछ देख रहे हो? Whatever you are aware of, it starts to inform your attitude, your manovritti towards something. Whatever you are aware of, वो एनर्जी से फिर आप कर्म में आते हैं। पूरा परिवर्तन का जो फ्लो है, प्रोसेस है, इट्स वेरी सटल। शुरू होता है स्मृति से। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, दिस इज द फ्लो। अभी जब हम समझो, मैं आप अभी आपको बैठ के बोलती हूं कि आप ऐसी घटनाएं याद करो जिसमें आपको बहुत दुख पहुंचा। इफ आई मेक यू रिमेंबर दैट एंड बिकम अवेयर ऑफ दैट, व्हाट विल यू स्टार्ट फीलिंग इनसाइड? कौन से फीलिंग्स प्रकट होंगे अंदर से? सैडनेस, और क्या, नेगेटिव इमोशंस, डर, अनसर्टेनिटी, और फिर वर्तमान समय वो एनर्जी अंदर से पैदा होंगी तो आप बाहर देखेंगे, ये मेरे को ऐसा क्यों देख रहा है? फिर व्यवहार में वो अनसर्टेनिटी आती है, वातावरण में वो वाइब्रेशन स्प्रेड होते हैं, फिर खुद में सेल्फ डाउट पैदा होता है, फिर जो आपको करना है आप वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन अभी एक स्विच में मैं आपको बोलती हूं, शांति की क्वालिटी आपके मन में लेके आओ। जस्ट थिंक अबाउट, पुट पीस ऑन द बैनर ऑफ योर माइंड फॉर अ मोमेंट। शांति शब्द या पीस? अभी एक दो सेकंड के लिए इसके ऊपर मंथन करो कि पीस और शांति का महत्व क्या है जीवन में। Just think about it for yourself for a few seconds now. Peace or shanti ka mahatva kya hai jeevan mein? Why is peace important in my life? अभी दूसरा प्रश्न, वो ही पीस, शांति, आप इस एनर्जी को विजुअलाइज करेंगे, एक रूप देंगे, एक इमेज देंगे, तो कौन सा इमेज मन में इमर्ज होता है? जस्ट गो इन टू द लेबोरेटरी ऑफ योर माइंड और शांति को सामने रख करके शांति की फीलिंग में आप शांति को विजुअलाइज करेंगे तो कौन सा रूप बनता है उसका, कौन सा इमेज बनता है? हर एक के लिए अपने अपने यूनिक होगा। मेरे लिए क्या है, What does peace represent for me as an image? ओके सभी को कुछ आया मन में यस लेट मी सी ओके थर्ड क्वेश्चन वही शांति का गुण लेके हम डेप्थ में जा रहे हैं ठीक है थर्ड क्वेश्चन शांति को प्रैक्टिकल रूप कैसे दिया जाए अपने व्यवहार में व्हाट डज पीस लुक लाइक In my day-to-day interactions, practically, इसको इसके ऊपर मंथन करो भी यही एक संकल्प पकड़ के शांति के अनुभव में चले जाओ मैं एक शांत चित आत्मा हूं बस इस एक संकल्प कि डेप्थ में जाओ फीलिंग में चले जाओ मैं एक शांत चित आत्मा हूं मैं एक शांत चित आत्मा हूं शांति मेरा स्वधर्म है शांति मेरी जीवन की खुशबू है और शांति मेरी आंतरिक शक्ति है मैं एक शांत चित आत्मा हूं Thank you. अभी शांति के ऊपर जो मंथन किया और जो अभी एक मिनट के अंदर उसके ऊपर थोड़ा मेडिटेशन किया अंदर से कौन सी फीलिंग आई क्या महसूस हुआ अंदर से सूदिंग कामनेस Happiness, powerful, bliss, charged, stability, focused, instant. So can you see the difference? One switch of consciousness, you can destabilize yourself or you can stabilize yourself. अभी मैंने आपको तीन प्रश्न पूछे थे. These three questions, they are the method to align this back to quality. क्या है, हम दुनिया में तो लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं. मैं अच्छा बनूं, मैं कुछ श्रेष्ठ काम करूं, चरित्र अच्छा हो, लेकिन शब्द क्यों आता है? क्योंकि वी डोंट हैव द मेथडोलॉजी टू इमर्ज दोज क्वालिटीज. और सारा लाइफ का मैनेजमेंट, जो भी हमारी लाइफ है, जीवन है, उसकी सारी मैनेजमेंट यहां से होती है. तो पहला जो प्रश्न था, याद है कौन सा प्रश्न था? शांति का महत्व क्या है? What is the significance of peace? तो what is the purpose of asking this question? To understand the value of something. देखो, हमारी बुद्धि, हमारी निर्णय शक्ति है, वो एक आत्मा की एक शक्ति है, और वो शक्ति सप्रेस हो गई है, करप्टेड हो गई है. तो हमने क्या किया, आपको एक क्वालिटी दिया और हमने बुद्धि को एक्टिवेट किया उस क्वालिटी के ऊपर, कि क्वालिटी के ऊपर आप सोचो, उसके डेप्थ में जाओ, समझो कि ये मेरे जीवन के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है. सो स्टेप वन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर मी? फिर दूसरा प्रश्न कौन सा था? इमेज. नहीं, मन क्या करता है? मैं आपको अभी बताऊंगी, थिंक ऑफ अ बनाना, तो आपके मन में एक बनाना का पिक्चर आएगा ना. तो वैसे ही व्हेन यू थिंक ऑफ पीस, कौन सा इमेज आता है मन में? मन को बहलाओ, बिकॉज इफ यू डोंट कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड, यू नो व्हाट दे से ना, कहावत है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. तो मैंने फिर आपको इस क्वालिटी के ऊपर मन को एंगेज किया, इस क्वालिटी, सेम क्वालिटी के ऊपर, और आपने इस क्वालिटी को विजुअलाइज करके मन को एक, मन से एक भासना पैदा हुई. अच्छा, दिस इज पीस, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीस फॉर मी. तो द सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड इट, सेकंड स्टेप इज फील इट, विजुअलाइज इट एंड फील इट. बिकॉज एनीथिंग, जो भी चीज आप मन में रखेंगे ना, तुरंत उसको, उसके कर्मेंद्रियों के साथ कनेक्शन है, तुरंत आप, आपको एक फीलिंग मिलेंगे. समटाइम्स वी मे अंडरस्टैंड समथिंग, लेकिन वो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने खुद को टाइम नहीं दिया है उस बात को, मन को एक फीलिंग देने के लिए. तो जब तक फीलिंग की पावर नहीं है, तो आपकी समझ आपके लिए काम नहीं करती है. यू आर लाइक एन इंफॉर्मेशन बैंक, लॉट्स ऑफ नाइस गुड पॉइंट्स स्टोर्ड इन योर तिजोरी, इन योर वॉल्ट, लेकिन नथिंग इन प्रैक्टिकल, बिकॉज द पावर ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट देयर. सेकेंड स्टेप, विजुअलाइज इट, फील इट, लेट योर सेंस ऑर्गन्स एक्सेप्ट एनर्जी ऑफ पीस, इवन जस्ट फॉर योर बॉडी. थर्ड स्टेप, तीसरा प्रश्न क्या था? हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? व्हाट डज इट लुक लाइक इन माय इंटरेक्शन? शांति के संस्कार को इमर्ज करना है ना. आपकी सारी जीवन इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ संस्कार्स. आइदर योर संस्कार्स आर तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी. यू चूज. हमने अभी मंथन में आपको टॉपिक दिया था. शांति का टॉपिक एक सतोगुनी टॉपिक है. बुद्धि इसके ऊपर अप्लाई हुई, मन ने इसको एक फीलिंग विजन क्रिएट किया और फिर संस्कार का एक रूप दिया कि हाँ, धैर्यता का रूप, शांति से बोलो, शांति से काम करो. और जब तक आपने मन बुद्धि संस्कार को अलाइन नहीं किया है तब तक शांति का स्वरूप नहीं बन सकते, क्योंकि द फुल फॉर्म ऑफ पीस इन्वॉल्व्स ऑल थ्री थिंग्स. अंडरस्टैंड इट, सी इट, फील इट एंड प्रैक्टिकली डू इट. And then we had a little 30 seconds, 1 minute meditation ka abhyas. I am a being of peace. Uska swaman jab banta hai, tab hamara swaroop banta hai. This is a very simple process. Aap yahan pe aaye hain, इतने सारे वर्कशॉप्स में बैठे हैं, इतना सारा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन बुद्धि ने फोकस किया है क्या क्या रत्न मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. या ऐसे ही सत्संग माफिक बैठे हैं, कनरस हो रहे हैं, दिस साउंड्स गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट सेशन. नहीं, नाउ डेज आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अ शॉपिंग मॉल. लेट्स गो टू दिस वन, फिर इसके पास जाओ, फिर इसके पास अभी के. लेकिन अपनी बुद्धि काम पे नहीं लगाई है कि आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मेरे लिए कौन सी बात इंपॉर्टेंट है. फिर वो चीज को सामने रख करके इसका महत्व क्या है मेरे जीवन में, मन में इसका क्या विजुअलाइज, मैं क्या करूं, ये फीलिंग क्या है इस चीज की, और इसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे लाऊं. और फिर वो ही स्वमान लेकर के मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करूं, मैं वो ही हूं, वो ही हूं. और द मोर यू इंटीग्रेट दिस इन टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीनरी उस तरीके से काम करती है. यू नो, राइट नाउ मैं आपको बताऊं ना, वी हैव made our intellects into dustbins. Why? How? आप सोचो, किसी का अवगुण देखना, आपने किसी का अवगुण, कोई बुरी बात आपने सामने रखी, उसके ऊपर आपका मंथन चलता है. What are you doing? You're taking in rubbish. You're churning rubbish. और फिर वो ही बात मन को सताती रहती है. यू कांट स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि किचड़ा का यही काम है. किचड़ा, डायमंड्स आर वैल्यूएबल, यू विल गेट वन डायमंड, बहुत वैल्यूएबल. किचड़ा कम्स इन हॉर्ड्स, डंपिंग. तो लोगों का वेस्ट लेकर के आपने अपने मन को और बुद्धि को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया है क्या? इतनी तो खुद की वैल्यू रखो कि मुझे आज दिन से मुझे किचड़ा नहीं लेना है. Somebody else's rubbish is not my business. Now, ये बात तो है that you have to build your own capacity. Weakness होने के कारण बुद्धि की निर्णय शक्ति खत्म है, मानसिक अवस्था वीक है. वो वीकनेस होने के कारण हम किचड़ा लेते हैं. फिर हम समझते हैं किसी ने हमारी इंसल्ट की, बस मैं यही हूं. क्योंकि अंदर का हमारा अभ्यास नहीं है. तो इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो बाहर की दुनिया से जो आप मिलेंगे आपका आइडेंटिटी उस अनुसार बनेगा. इट्स नॉर्मल. आजकल तो साइंस ने भी हमको बताया है कि द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ योर डे, जो भी आप संकल्प रचेंगे, जो भी फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, जस्ट इन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ डे, उससे आपका सारा दिन का मूड बन जाता है. अभी आपको पता है मूड इज सच ए पावरफुल थिंग. सवेरे उठो, अच्छा मूड है तो सब कुछ अच्छा है. भल बाहर बारिश है, भल कोई मिस्टेक, कोई हर्जा नहीं बेटा, कोई हर्जा नहीं. लेकिन मूड जब खराब होता है, इवन इफ इट्स अ नाइस डे, नाइस पीपल, कुछ अच्छा नहीं लगता है. तो वी नीड अ ड्रास्टिक चेंज इन लाइफस्टाइल टू सपोर्ट द बेस्ट ऑफ हु वी आर टू कम आउट. हमारे अंदर शांति है, प्रेम है, कंपैशन है, दया भाव है, सत्यता की शक्ति है, लेकिन सब बातें सप्रेस हुई है क्योंकि खुद को टाइम नहीं दिया है. तो इसीलिए यहां पे जो आप सीख रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ साइंस, इट्स अ लाइफस्टाइल. एंड यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम इन द मॉर्निंग, थोड़े समय के लिए, कोई ऐसी एक दो बातें लिख करके, ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, अंडरस्टैंड इट, विजुअलाइज इट, प्रैक्टिकली थिंक अबाउट डूइंग इट एंड स्पेंड सम टाइम इन मेडिटेशन विद इट. ये आप हर रोज करेंगे ना, इस विधि को अपनाएंगे ना, यू विल सी कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो तुरंत आपकी गियर पॉजिटिव ट्रैक में रहती है. और एक बारी डोमिनो उस तरफ गिरा तो वही रास्ता सारा दिन पकड़ेगा. आप पॉजिटिविटी आपके लिए ऑटोमेटिक काम करेगी. लेकिन आप जैसे सवेरे उठे और डोमिनो, पता है ना डोमिनो का गेम कैसे होता है, आप गिराते हो डोमिनो को और आपने नेगेटिव के तरफ गिराया या पुरानी बातों के तरफ गिराया, तो आपको वही रास्ता लेना पड़ेगा सारे दिन में. इट्स कॉल्ड मर्फीज लॉ. What has gone wrong has to go wrong, must go wrong, will go wrong. तो वो रास्ता क्यों पकड़े? It starts with the seed of your thoughts. That's why if you want to become a meditator and a yogi soul, जो हम सवेरे का समय, जो हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हम यहां पे अमृत वेले का समय कहते हैं. Very precious time. You give that time to yourself. First investment in the day is for yourself. For focusing your buddhi, your man, your whole capacity, internal capacity to visualize your goodness. तब आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी चलेंगी दिन में. और क्या है, हमारी जो वर्च्यूज और क्वालिटीज है, ये हमारी क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन है. बातें तो बहुत आती है, सिचुएशंस बहुत आते हैं, संस्कार के टकराव, स्वभाव के टकराव, रिलेशनशिप्स इश्यूज, वो तो बातें आएंगी जाएंगी क्योंकि तमोप्रधान दुनिया में बैठे हैं. लेकिन व्हेन आई हैव अ सेंटर ऑफ स्टेबिलिटी एंड फोकस, यही वाइब्रेशंस मेरी प्रोटेक्शन, मेरी रक्षा करती हैं. मैं बाहर की दुनिया का प्रभाव के वश नहीं चलती हूं. मैं खुद की जो बनी हुई वाइब्रेशंस के आधार से मैं चलती हूं. मैं अपना जीवन का रास्ता निकालती हूं. मैंने आपको बताया कि राजयोग में 3 स्टेज होते हैं. पहला जो स्टेज है स्मृति बनाना, create your awareness and create the awareness of reality. You know, we have to go to the root of something, that there are some belief systems yahan pe jo hum misunderstanding kahenge, limited belief systems jo humne rakha hai, jis aadhar se hamare sara jeevan ka anubhav ho raha hai, aur kai galat fehmi hai khud ke prati, शायद भगवान के प्रति, शायद कर्म फिलॉसफी की इतनी समझ नहीं है. तो वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज रियलिटी. मैं एक सिंपल बात आपको बताती हूं, टाइम की बात. देखो टाइम को भी कॉमन सेंस होता है. एक सीन को लेके आता है और टाइम भी उसको लेके जाता है. और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पकड़ लेते उसको. शायद दो मिनट का सीन होगा, 30 साल तक वो 2 मिनट का सीन पकड़ के बैठेंगे क्या? उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने ऐसा बोला मेरे साथ. And every time you remember anything that has passed, in that moment, पूरे आपके cellular shutdown होता है शरीर का. You are not living in the present. So how you can see opportunity? How you can see आगे बढ़ने का रास्ता कैसे आप दिखाएंगे? क्योंकि सारा time past का चिंतन. अभी time को ये common sense है. और हम मनुष्य आत्मा के पास इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि जो बात गई है उसको फुल स्टॉप तो करो. गई है, मुझे सीखने को क्या मिला उससे, वो ही लेके आगे बढ़ो. यू कैन लेट गो ऑफ द पर्सन, लेट गो ऑफ द डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन, कैरी द सिग्निफिकेंस, द लर्निंग, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम योर पास. सिंपल थिंग्स. लेकिन जब भी आप अपने आप को बैठ करके ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे, आत्मा का मंथन नहीं करेंगे, आखिर मैं हूं कौन? मैं कहती हूं मैं शरीर हूं, लेकिन ये मैं बोलने वाला कौन है? मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बोलने वाला कौन है? उसकी गहराई में जाओ. दिस इज रियलिटी. And when you hit reality, you hit the point of truth. It's unshakable, immovable. क्योंकि truth और stability का बहुत गहरा connection है. तो ये स्मृति, first level is educate yourself. Whole thing needs spiritual re-education. Dismantling limited belief systems with spiritual knowledge. और खुद अपने जीवन में principles बना करके, ताकि मेरी स्मृति एक level पे रहे. तो it's very deeply linked to what you remember also. इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रही हूं कि we be very careful what you are thinking about, because you are creating an awareness. फिर जो दूसरा लेवल है, जो हम योग शब्द यूज करते हैं यहां पर, योग एक साधना है. स्मृति से तो एक फीलिंग आती है, याददाश्त आती है, अच्छे मेमोरीज आते, फीलिंग्स निकलते. योग से हमारे हैबिट्स परिवर्तन होते हैं, योग से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं. इसलिए हम बुद्धि योग कहते हैं, एक साधना है. और आप जितना ज्ञान स्टडी करेंगे यहां पे, तो कई योग के अवस्था होते हैं जिसको हम दिन भर में जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है. बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज द मेथड टू बिकमिंग स्पिरिचुअली पावरफुल. इट्स नॉट जस्ट हैविंग ज्ञान. भारत में तो भाषण करने वाले तो बहुत लोग हैं और इतने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट द पावर इज नॉट देयर. स्पिरिचुअल पावर रिक्वायर्स योग, बुद्धि योग, खास करके परमात्मा के साथ कनेक्शन. कितनी सारी अवस्थाएं आती है। और जो फाउंडेशनल एक अवस्था है जो हम साक्षी दृष्टा बिकमिंग अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, दिस इज वन। अभी आप एक सेकंड के लिए जस्ट व्हाइल सिटिंग हियर गो इनसाइड, अंदर मन को एक थिएटर बना दो, जैसे यहां पे थिएटर जैसा है ना, लेकिन अंदर मेरे मन में खाली थिएटर है। अंदर जाके बैठ जाओ। और आपके कानों द्वारा ये कान एक स्पीकर्स बन गए थिएटर में, और उन स्पीकर्स द्वारा ये आवाज सुनने को आ रहा है आपको। अपनी शक्ति को अंदर महसूस करके अपने आप को एकाग्र कर लो। अंदर एक शरीर रूपी वस्त्र है, आंखें खिड़कियां है, काने स्पीकर्स है, ये मुख माइक है, और मैं एक सूक्ष्म शक्ति हूं अंदर, चैतन्य शक्ति हूं, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली शक्ति। जैसे प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे डिटैचमेंट, और जैसे हम अंदर कमरे में बैठे हैं ना, बाहर की दुनिया में तो होता रहता है, एक व्यक्ति आता है जाता है, सीन होता है, बदलती रहती है, लेकिन मेरे कमरे के अंदर मैं स्थिर बैठी हूं, मैं सब कुछ साक्षी होकर के देख रही हूं। ऐसे नहीं कि कर्म छोड़ना है, ये एक स्पिरिचुअल अवस्था की पोजिशनिंग की बात है। क्या है, आप देखो प्रैक्टिकल रूप में, कोई जज होता है, वो जजमेंट कब देगा जजमेंट, और उसका जजमेंट में पावर तब होगा जब वो अपनी सीट पे बैठेगा ना, जब भी लॉ कोर्ट में जाकर के अपना सीट लेगा, अपने कोर्ट सारा वस्त्र पहनेगा और फिर जजमेंट देगा, तभी वो लॉ पास होता है ना। घर बैठे हुए चाय पीता होगा और वही बात करेंगे तो लॉ बनेगा इसका क्या? तो कहने का भाव है, हमारे पावर्स हमारे हाथ में आएंगे जब हम ये सीट ग्रहण करेंगे पहले, फिर कर्म करो, तब जाकर के जो आप करेंगे पावरफुल होगा। लेकिन ये सीट छोड़ के किसी के प्रभाव में, कोई दूसरे पुरानी बातों में, बस कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे आपके कार्य में शक्ति आएंगी, परिवर्तन की शक्ति। तो दिस इज व्हाट योगा इज, फाइंड योर सीट फर्स्ट देन एक्ट। और ये बार बार दिन में इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू नो जापान में दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस काइजेन, कहते हैं आपको जो भी इंप्रूवमेंट करना है दिन में एक मिनट आप टाइम फिक्स करो उसकी अभ्यास के लिए, बस एक मिनट, फिक्स टाइम, सर्टेन टाइम ऑफ द डे, वन मिनट, और जो भी आपको अभ्यास करना है वो पूर्ण रूप से ध्यान से देकर के एक मिनट का उसका अभ्यास करो, और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इट स्टार्ट्स टू बिकम an avastha, a stage, a mental state of being. और एक बारी वो सेट हो गया ना तो फिर आपकी गाड़ी उस अनुसार ही चलेंगी। लेकिन साधना इट्स अ प्रैक्टिस, सो द सेकंड लेवल। फिर जब थर्ड लेवल की बात हम करते हैं, हम मेडिटेशन शब्द यूज करते हैं, मेडिटेशन इज ध्यान, Very simple. You can meditate on anything. आप जब किताब पढ़ रहे हो और अच्छी किताब होती है तो इतना ध्यान चला जाता है किताब में कि इट बिकम्स योर वर्ल्ड इन दैट मोमेंट, राइट? और बाहर की बातें जो ध्यान में नहीं आती है क्योंकि यू आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन इट. तो वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा मेडिटेशन कुछ बाहर की चीज पे नहीं है, कैंडल फ्लेम पे नहीं है, कोई मंत्र पे नहीं है, हमारे आंतरिक क्वालिटीज के ऊपर है. आप एक अंदर की क्वालिटी, जैसे हमने शांति को एग्जाम्पल लिया, बस वो एक दो संकल्प पकड़ के उसके डेप्थ में चले जाओ, भल बीच में आपका मन भटकेगा, वापस प्यार से लेके आओ वही संकल्प पे, और आप अवश्य देखेंगे, आप जैसे इसका अभ्यास करेंगे वैसे आपका मन बुद्धि सब कुछ लाइन में आएगा. So you have to give yourself time to go into each one of your qualities. Peace, love, purity, happiness, truth. Every one of these qualities. हम यही करते हैं, तभी जा करके खजाने जमा होते हैं अंदर से, आपकी ट्रुथ की शक्ति जमा होती है, साइलेंस पावर जमा होती है, पीस की शक्ति जमा होती है. तो आप तो किताब पढ़ने के लिए टाइम देते हो, तो ये काम के लिए क्यों नहीं टाइम देते हो? तो अभी समय की सीमा को देख करके अपने वचन को यहां समाप्त करती हूं, और हमारी दिल की आश है कि आप सभी के जीवन में, आप यहां जो आए हैं शॉपिंग के लिए नहीं आए हो, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हो. तो माय हार्ट रिक्वेस्ट इज कि आप अपनी बुद्धि मन संस्कार को, एक दो चीज भी आप लेकर के वो जीवन में प्रैक्टिकल ले आएंगे ना, तो बहुत ही परिवर्तन होगा. तो हमारे गुड विशेस है, हमारे दुआएं हैं, हम तो सभी आपकी बहनें हैं, ये आपका घर है, भगवान का घर है, और आपको कभी भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए ना सामने से, तो ये घड़ी याद करना. रिमेंबर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, दैट विल ब्रिंग यू स्टेबिलिटी. ओके, यस, थैंक यू. ओम शांति.
इतनी अच्छी स्पीच सुनने के बाद हम भी स्पीचलेस हो जाए, ऐसा कुछ माहौल दीदी ने बना दिया कि कुछ भी ना बोले और उस शांति को हम अनुभव करते रहे. आप जब यहां से जाएंगे, ज्ञान सरोवर की यात्रा को पुनः जब याद करेंगे, 22 तारीख शाम का इस समय को याद करेंगे, आपको ये शांति की सौगात भी याद आएगी. आएगी ना शांति? ये बहुत बड़ी शक्ति है जो क्रोध से काम नहीं हो सकता, वह शांति से हो सकता है, और जानवरों पर भी इसका इफेक्ट होता है शांति का. तो इतनी बड़ी शक्ति हमें दीदी के द्वारा दी, तो हम दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और कर्तव्यधानी से उन्हें अभिवादित करते हैं. अभी हमारे बीच में एक और पावरफुल प्रवक्ता है, अश्मिता बहन जी, राजयोगिनी अश्मिता बहन जिनका परिचय देने जा रही हूँ, जो एक एंजल जैसी हमारी प्यारी बहन है, जो 19 साल से इस विद्यालय से जुड़ी हुई है, वह भी बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, साथ में MBA इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी और MBA इन सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट भी उन्होंने कोर्स किया हुआ है। आप मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री में भी ट्रेनिंग कोर्सेज देने जाते हैं, जिसमें हार्मनी इन रिलेशनशिप, पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग आदि आदि कोर्सेज आप मिलिट्री एवं पैरामिलिट्री के कमांडोस को कराती हैं, और आप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी आप ट्रेनिंग कोर्सेज देने जाती हैं। आपकी स्पीच और कोर्सेज से बहुत लोगों को लाभ होते हैं। साथ में आपने एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन में भी आपने भाग लिया था। आप उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली NCR आदि में कैंपेन लेकर इन स्पिरिचुअलिटी को आदान प्रदान करने अर्थ जाई गई हुई है। तो ऐसी हमारी अश्मिता बहन जी, जिनको मैं अपनी बात रखने के लिए इनवाइट करती हूँ। अश्मिता बहन,
ओम शांति, गुड इवनिंग। आगे कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता के हेतु गोपी दीदी हम सभी के बीच से प्रस्थान कर रहे हैं। सभी हाथ हिला के गोपी दीदी का थैंक्स करेंगे। सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ओम शांति। कमिंग टू द टॉपिक साइंस ऑफ मेडिटेशन, दीदी ने कहा इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। एक्चुअली मेडिटेशन आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि मेडिटेशन में जो अनुभूतियां होती है वो रियलिस्टिक है। कई बार जो आज की जेनरेशन है उनको लगता है सोल, सुप्रीम सोल, मेडिटेशन, ये सारी चीजें कहां। इतना ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ ये सारी चीजें शायद बहुत पीछे की बातें हैं। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है? आज की तारीख में आत्मा, परमात्मा को ध्यान करना, इन बातों की जरूरत है? जो समझते हैं एक बार हाथ खड़ा करिएगा। ओके, टू गुड। पर स्कूल्स कॉलेजेस में जो हमने देखा है आज के यंग जेनरेशन की जो मेंटालिटी है, वो सोचते हैं कि ये सब कहीं लेटर एज में प्रैक्टिस करने की बातें हैं, हमारे एज में नहीं। आपको क्या लगता है? सही है? यस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, साइंस, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपको सत्य का बोध कराती है, और जितना अर्ली एज में आप ट्रुथ को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, आप उतनी ही गलतियों से अपने आप को बचाकर रख पाते हैं। अगर एक लेटर एज में हमने समझा भी कि भाई सही क्या है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पूरा लाइफ तो आपका गुस्सा करके, इरिटेशन करके, बदले की भावनाओं को लेकर बीत गया। अब आपको रियलाइजेशन हो भी रहा है तो आपके पास बहुत कुछ करने के लिए स्कोप नहीं है। Am I right? इसलिए आवश्यक है जब हम लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, जब हम किसी प्रोफेशन में हैं, जब हमें फैमिली को मैनेज करना है तब हमें इन चीजों को बहुत अच्छे से जानना समझना है। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं लिखा है मेडिटेशन इज टू द माइंड व्हाट फिजिकल एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं? यस, आप फिजिकली फिट हो जाते हैं। फिट मतलब आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? और लोग जिम जाना आजकल पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपके बॉडी में जो अननेसेसरी फैट जमा हो रहा है वो भी क्या होता है, कुछ हद तक बर्न हो जाता है। द सेम रोल इज प्लेइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन भी वही रोल प्ले करता है, पर मेडिटेशन हमको किस लेवल पे हील करता है, किस लेवल पे फिट रखता है? एट द मेंटल लेवल। हम मन से फिट हो जाते हैं, हम इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, हमारी मेंटल रेजिलियंस बढ़ जाती है। यानी कोई चीज हमें मिली तो भी फाइन, नहीं मिली तो भी फाइन, हमारी बात किसने माना तो भी फाइन, नहीं माना तो भी फाइन। और आज शायद यही प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ कि हम जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी के कारण बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज को लेके हम चल रहे हैं। व्हाई मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगी। एक बार बहुत अच्छे तीरंदाज थे, उन्हें लगा शायद मैं विश्व का सबसे श्रेष्ठ तीरंदाज हूं। तो किसी ने उनसे कहा कि इस गांव के कोने में एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, आप उनके साथ कंपीट करो, अगर आप उनसे कंपीट करके जीत जाते हो तो आप मान सकते हो कि आप विश्व के सबसे श्रेष्ठ तीरंदाज हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो उनके पास गए और उनसे बातचीत हुई कि भाई हम आपस में कंपीट करने वाले हैं। तो उनको लेके गए और उन्होंने मैदान के बीच का एक स्थान चूज किया और कहा कि मैं अपना निशाना वहां लगा रहा हूं। और उन्होंने अपना निशाना बिल्कुल एक्यूरेट लगाया क्योंकि धनुष पे उनका बहुत अच्छा, तीर पे उनका बहुत अच्छा नियंत्रण था। फिर उन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा कि भी अब आपकी बारी है, आप अपना निशाना लगाएं। तो ये भी बहुत धुरंधर थे तो इन्होंने भी अपना निशाना बिल्कुल एक्यूरेट लगाया। अब इस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि अब मैं एक जगह निशाना लगाऊंगा और फिर वही आपको भी लगाना है। और उन्होंने क्या किया, उनको लेकर गए दो पहाड़ियों के बीच एक कठिन रास्ते में जहां पर नॉर्मली एक व्यक्ति को खड़े होने में डर लगेगा, परंतु ये व्यक्ति अंदर से बिल्कुल स्टेबल थे, डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो वहां पे बहुत कॉन्फिडेंटली खड़े होकर अपना तीर छोड़ते हैं और बिल्कुल निशाने पे लग जाता है। अब बारी उस व्यक्ति की जो सोच रहे थे कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हूं। अब उनको वो रास्ते पे जाने के लिए ही डर लग रहा था, बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत देके वहां पर पहुंचे। और जैसे ही उस कठिन से रास्ते पे जैसे तैसे पहुंच गए तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, बहुत ही अनस्टेबल। उनके पैर कांप रहे थे और उनके हाथ धूज रहे थे। क्यों? इनस्टेबिलिटी कहां पे थी, यहां पे थी। और उसका असर कहां आ रहा था, उसका असर इंटायर बॉडी पे आ रहा था। अब बहुत अच्छा निशाना लगाना उन्हें मालूम होते हुए भी जब उन्होंने अपना तीर छोड़ा वो निशाने के नजदीक भी नहीं पहुंचे। तो ये मन की स्टेबिलिटी, इसके लिए हमको मेडिटेशन की जरूरत है। तो देखते हैं हम मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडरी विच मीन्स टू हील। हम हिंदी में कहते हैं राजयोग। योग शब्द एक संस्कृत शब्द से आया है युज, जिसका मतलब है कनेक्शन, लिंक और रिलेशनशिप। तो ये राजयोगा मेडिटेशन का अर्थ होता है कुछ परम शक्ति के साथ एक स्नेह भरा संबंध स्थापित करना और उस परम शक्ति के साथ अपना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना। एंड आप सभी को और बाकी दो दिनों में बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन। हम अपनी बात बोलते भी हैं और परमात्मा हमें जो सिग्नल देना चाहते हैं वो हम सुनते भी हैं। तो मेडिटेशन को यदि हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में डिफाइन करना चाहें, हम कहेंगे इट्स लवफुल कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट। जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, आज के सेशन में आपको क्लियर हुआ होगा, जस्ट मैं रिवाइज कराना चाह रही हूं। ह्यूमन हैज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ह्यूमस, द मीनिंग इज सॉयल। हम कहते हैं मिट्टी का शरीर, मिट्टी में मिल ही जाएगा। परंतु इस जड़ शरीर को, इस बॉडी रूपी मशीन को चलाने वाली एक शक्ति है और उस शक्ति का नाम क्या है? उस शक्ति का नाम है आत्मा, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे हम साइकी कहते हैं, जिसे हम बीइंग कहते हैं, जिसे लाइफ एनर्जी कहते हैं, जिसे वाइटल फोर्स भी कहते हैं। और ये सोल कहां एग्जिस्ट करती है? बॉडी में। इट इज नियर हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन में पिनियल ग्लैंड के नजदीक, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीचों बीच, जिसको हम कहते हैं भ्रुकुटी। आत्मा यहां पर रहती है। आत्मा है या नहीं है ये जानना क्यों जरूरी है? मैं आत्मा हूं ये रियलाइज करना क्यों जरूरी है? अभी तक हम नहीं कर रहे थे तो भी तो गाड़ी चल रही थी ना। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? एक सिंपल सा एग्जांपल, हम किसी से मिलने जाते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा टोन, हमारा लहजा, सामने वाला कौन है उसको लेके चेंज होता है। यस और नो? यस और नो? आप किसी चपरासी से बात करेंगे तो आपका लहजा अलग होगा, आप थोड़े और ऊंचे औहदे वाले से बात करेंगे तो आपका लहजा, आप में जो पोलाइटनेस होगी वो डिफरेंट होगी, और आप एक बहुत बड़े अच्छे ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो आप और ज्यादा पोलाइट और ज्यादा कॉर्डियल होंगे। यस और नो? व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस? आप क्या देख रहे हैं? सामने वाले का पोस्ट, सामने वाले का पोजीशन? यस और नो? यस और नो? पर अगर हम चाहते हैं कि चपरासी से भी हम उतना पोलाइटली बात करें और एक बीच वाले व्यक्ति से भी उतना ही पोलाइटली कॉर्डियली बात करें और एक टॉप वाले व्यक्ति के साथ भी उतना ही पोलाइटली और कॉर्डियली बात करें, इज इट इंपॉर्टेंट? इज इट इंपॉर्टेंट? क्या आवश्यक है? आपको लगता है हर किसी के साथ हम बहुत कॉर्डियली, पोलाइटली, बहुत लवफुली हम बिहेव करें, बात करें, पेश आए? इज इट इंपॉर्टेंट? यस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए हमें वो अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में चेंज लाना पड़ेगा। जब हम खुद को भी समझते हैं कि आई एम अ स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट और सामने वाले को भी देखते हैं कि ये भी एक स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट है, नो मैटर उसका पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपने आज सुबह सुना होगा कि आत्मा के 7 इनेट क्वालिटीज हैं। जैसे ही हम अपने आप को सोल, स्पिरिट, वो कॉन्शियसनेस, आत्मा फील करते हैं, ऐसे ही आत्मा के साथ वो 7 क्वालिटीज है ही, शांति है। तो अगर आप फील कर रहे हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं तो बिहेवियर कैसा होगा? ऑब्वियसली पीसफुल। अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं आई एम अ लवफुल बीइंग, तो बिहेवियर कैसा होगा? चाहे वो कोई भी हो सामने, मैं अगर लवफुल बीइंग एक्सपीरियंस कर रही हूं, चाहे वो कोई भी हो सामने, मेरा बिहेवियर कैसा होगा? लवफुल होगा। आप यहाँ पे आए हैं अपने अपने स्थान से फ्री होके, अपने ड्यूटी से फ्री होके 3 दिन इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, किस लिए? कुछ ऐसी टेक्निक आप सीखें जिससे आपका लाइफ और अधिक पीसफुल और हैप्पी हो जाए, यस और नो? यस और नो? तो ये जो आउटर रिफ्लेक्शन, शांति, खुशी, प्रेम, ये कब आएगा? जब वो अंदर फीलिंग आएगी कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, तो जो अंदर होगा वही बाहर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। और रही बात कि आत्मा बॉडी में है नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कईयों के मन में आते हैं, बहुत सारे आज के तारीख में हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च है जिसके आधार पर इस बात को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि डेफिनेटली बॉडी के अंदर बॉडी को चलाने वाली कोई शक्ति है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ केसेस में अपना रिसर्च किया है, जिनको अपने पास्ट लाइफ की बातें याद है, या जिसको हम कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो ये सारी बातों से इस चीज को बहुत क्लियरली हमें मानना ही होगा कि बॉडी के अंदर कोई तो शक्ति है जो इस बॉडी को चला रही है। इसको हम इलॉजिकल नहीं कह सकते, दिस इज वेरी मच साइंटिफिक। तीसरी बात है, जब हम मेडिटेट करते हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने अंदर के उस पीसफुल स्टेट को, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि ये जड़ शरीर के अंदर एक चेतन शक्ति है जो अपने आप में पीसफुल है। तो रेफरेंस के लिए आप कई चीजों को रेफर कर सकते हैं, मेनी लाइव्स, मेनी मास्टर्स, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ बिफोर लाइफ, ये कुछ अमेरिकन फिलोसोफर साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे शोध के बाद इन किताबों को लिखा है, जिसमें उन्होंने क्लियरली इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, शरीर के अंदर वो चेतना शक्ति मौजूद है, जिस चेतना शक्ति के चले जाने पर हम क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हम मुर्दे कहलाते हैं, डेड बॉडी कहलाते हैं। तो चलिए एक मिनट के लिए हम एक्सपीरियंस करेंगे, एक बहुत सुंदर सा गीत बजेगा, और मैं चाहूंगी यदि आपको ऐतराज न हो 2-3 मिनट्स का हम ये एक्सपीरियंस करेंगे। आप खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे? हां जी। और जैसे ही गीत के शब्द होंगे ऐसे ही आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिएगा। आपको सुबह के सेशन में भी बताया कि हम मस्तक के बीच वो चेतना शक्ति है, अब थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि मेरे मस्तक के बीच एक शक्ति जगमगा रही है। बहुत सुंदर गीत बजेगा, मैं जगमगाती। आमने सामने खड़े हो जाएंगे दो दो जने,
प्रेम स्वरूप में आत्मा,
प्रयास करें सामने वाले के मस्तक के बीच उस ज्योति बिंदु को देखें। और अपने से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले को भेजें।
ज्योति स्वरूप में आ स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ।
शांति और प्रेम के वाइब्रेशन मेरे से निकलकर सामने स्थित आत्मा को पहुंच रही है। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। यही प्रैक्टिस यहां से लौटने के बाद भी हर किसी के संपर्क में आते करना है। कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किस भी पोस्ट पोजीशन में हो, हमें उनके साथ पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करना है। पर वो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कब हो पाएगा? जब हम उस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में खुद होंगे। साइंस सेज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड सोल बीइंग अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, रियलाइज करते हैं, तो डेथ ऑफ फियर कम हो जाता और डीपर रियलाइजेशन के साथ ये खत्म हो जाता। तीन फैकल्टीज मन बुद्धि संस्कार आपने जाना। मैं इसमें इस बात को एम्फसाइज करना चाह रही हूं कि हमारे माइंड में कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल है। अगर एक आइस को हम पानी में डालते हैं तो आप सभी जानते हैं 10% ही पानी के ऊपर रहता है और 90% सबमर्ज रहता है। ऐसे ही हमारे कॉन्शियस माइंड के पास मात्र 10% शक्ति है, बाकी 90% शक्ति हमारे सबकॉन्शियस लेवल में है। लेकिन वो 90% सबकॉन्शियस पावर के प्रति हमारा एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा हलचल में है। मान लीजिए पानी है, तालाब है, आप तह तक क्या है कब देख सकेंगे? दो कंडीशन है, पानी क्लीन होना चाहिए एंड दूसरा पानी स्थिर होना चाहिए। यस और नो? पानी क्लीन है और स्थिर है तो आप तह तक देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर तक क्या है वो देखने, जानने, समझने और उसको एक्सेस करने के लिए यहां कॉन्शियस माइंड क्या होना चाहिए? ये पहले स्थिर होना चाहिए। और जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करते आए हैं, आपको और डीपर लेवल में प्रैक्टिस कराया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? अपने कॉन्शियस माइंड को साइलेंट कर रहे हैं। और जैसे ही हम अपने कॉन्शियस माइंड को साइलेंट करते हैं, हम कहां चले जाते हैं? सबकॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं। मतलब वो जो 90% पावर हमारे अंदर छिपा हुआ है, उस पावर के प्रति हमारा एक्सेस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन जब हम करते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ जाती है, हमारी सोई हुई शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है, हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती है। सो दैट्स द रीजन व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट। और जैसा आपको गोपी दीदी ने बताया, मेडिटेशन का बेस्ट टाइम क्या है? मॉर्निंग। ओके, मैं सुबह 4 बजे उठी, 6 बजे मेडिटेशन करूं तो कोई मतलब नहीं है। मतलब है, मेडिटेशन कभी भी करें तो मतलब है, 2 मिनट के लिए करें तो भी मतलब है, 5 मिनट के लिए करें तो भी मतलब है, आधा घंटे के लिए करें तो और ज्यादा मतलब है। सोने से पहले और सुबह उठने के साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए हमें यहाँ पे परमात्मा ने इस विद्यालय के जरिए सिखाया कि रात को सोने से पहले मेडिटेशन इज अ मस्ट। जो भी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन की बातें दिन भर की हैं, उसे हमें क्या करना है, डंप कर देना है, माइंड को बिल्कुल क्लीन क्लियर करके बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को लेकर हमें सोना है। क्योंकि आप एंडिंग जैसा करोगे, बिगिनिंग भी, नेक्स्ट डे की बिगिनिंग भी वैसी होने वाली है। और सुबह उठने साथ 10 मिनट्स भी यदि हम मेडिटेट करते हैं और अपने आप को बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, तो वो इट्स लाइक अ कॉन्शियस ट्रेनिंग टू द सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस एक्ट्स लाइक अ स्लेव। यदि आपने सबकॉन्शियस में फीड कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो मान के चलिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपने सबकॉन्शियस में फीड कर दिया आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो जो कहीं आपको पहले मुश्किल लग रहा था। सुप्रीम लाइट परमात्मा, आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। एंड एज आई सेड, जब कभी हम टेलीफोन के जरिए किससे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का जरिया होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब हम परमात्मा से बातचीत करते हैं तो जरिया होता है थॉट वेव्स। इसलिए कहते हैं औरों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, पर अपने आप से और भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। यू नीड साइलेंस। साइंस ऑफ मेडिटेशन की एक और बात समझ में आती है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जैसे ही हमारे मन को हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, परमात्मा बीइंग द सुप्रीम पावर हायर पोटेंशियल, वहां से क्या होगा, एनर्जी बाय डिफॉल्ट फ्लो करना शुरू हो जाता है। आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, देयर आफ्टर द फ्लो इज बाय डिफॉल्ट। वो शांति के सागर है तो शांति महसूस होना शुरू हो जाता, वो प्रेम के सागर है तो प्रेम महसूस होना शुरू हो जाता, वो शक्ति के भंडार है तो शक्तियां आनी शुरू हो जाती है। तो मेडिटेशन इज लाइक चार्जिंग द बैटरी ऑफ द सोल। जो आत्मा ही रिचार्जेबल बैटरी है, और आज की तारीख में छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारी बैटरी कमजोर हो गई है। इसको अगर उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। मतलब हम वो पीसफुल, हैप्पी, लवफुल, ब्लिसफुल स्टेट को बहुत नेचुरली और इजीली एक्सपीरियंस कर सकेंगे। और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, इंटेलेक्ट डिवाइन हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, और हमारे हैबिट्स में जो नेगेटिविटीज हैं, हमारे नेगेटिव हैबिट्स हैं या कुसंस्कार हैं, तो वो सारी चीजें क्या होगी, जैसे फैट बर्न हो जाता है, ऐसे मेडिटेशन से क्या होगा, हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी बर्न हो जाएंगी। तो ये निमहंस बैंगलोर के साथ MOU साइन हुआ है और बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए जा रहे हैं जिसमें ये पाया गया है कि मेडिटेशन में हमारे ब्रेन में क्या कनेक्टिविटी में डिफरेंसेस आता है। आप स्लाइड में देख सकते हैं प्री मेडिटेशन ब्रेन कनेक्टिविटी कैसी है और पोस्ट मेडिटेशन हमारे ब्रेन की कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। यानी हमारा ब्रेन का फंक्शन करना, हमारी इनर एबिलिटी, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ मेडिटेशन से बढ़ जाती है। ये आज की तारीख में साइंस इस चीज को मान रहा है। हमारे ब्रेन वेव्स जो होते हैं डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा, जब हम डीप स्लीप की स्टेट में होते हैं तो डेल्टा वेव्स एमिट होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी लेवल सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम अवेकन होते जाते हैं, जितना ज्यादा ज्यादा एक्टिविटीज में एंगेज होते जाते हैं, ऐसे ही ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। और आपको ये जानकर खुशी होगी, हमारी राजयोगिनी परमादरणीय दादी जानकी जी, जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज के चीफ हुआ करते थे, उन पर एक बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया गया था USA में। उनको अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए कहा गया, मैथमेटिकल सम दिया गया सॉल्व करने के लिए, किसी के साथ थोड़ा सा तर्क हो रहा है वैसी स्थिति से भी उनको गुजारा गया, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में उनको रखा गया, और हर सिचुएशन के दौरान EEG के जरिए उनके ब्रेन वेव्स को उसके वेबलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, हर सिचुएशन में उनके ब्रेन वेव्स डेल्टा वेव्स थे, जो कि डीप स्लीप के समय होता है। एंड शी वॉज टोल्ड टू बी द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा वुमेन। सो दिस इज साइंस बिहाइंड मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन हमारा कितना अच्छा हो जाता है, हमारे थॉट्स कितने स्टेबल और सिस्टमैटिक वे में रन करने शुरू करते हैं। द लास्ट थिंग, जैपनीज साइंटिस्ट, शायद आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर मैसुरू इमोटो, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। फुजीवारा डैम से उन्होंने वाटर सैंपल लिया, मेडिटेशन से पहले उसका वाटर क्रिस्टल को फ्रिज करके उसका स्ट्रक्चर लिया, और मेडिटेशन के बाद वहां के प्रेस से कहा कि एक घंटा आप इस पानी को सामने रख के मेडिटेट करिए और इसको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। तो उन्होंने एक घंटा मेडिटेशन किया और मेडिटेशन के बाद वही वाटर सैंपल को उन्होंने फ्रिज करके उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत 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 ट्रेमेंडस डिफरेंस पाया गया। जब हम लविंग, बेनिवोलेंट, कंपासनेट ह्यूमन इंटेंशन किसी भी चीज को देते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो काफी ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और सिमेट्रिक हो जाता है। और जब फियरफुल, डिस्कॉर्डेंट इंटेंशंस किसी भी चीज को प्राप्त होते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो काफी अनसिमेट्रिक, इरेग्युलर, डिस्कनेक्टेड, ऐसा वाला आता है। आप देख सकते हैं, डिसगस्टिंग एक वर्ड आपने पढ़ा, तो आपके मन के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, और देखिए स्ट्रक्चर, आपने लव वर्ड पढ़ा तो आपके अंदर के इमोशंस कैसे होते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स टू द स्ट्रक्चर, और इविल, इससे स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो ये सारी चीजें सिग्निफाई करती हैं कि मेडिटेशन इज वेरी मच साइंटिफिक। अगर रेगुलर बेसिस में हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और लाइफ में किसी भी फील्ड में हम एक्सेल तो कर ही सकते हैं, हमारी सारी नेगेटिविटीज को बहुत इजीली हम खत्म कर सकते हैं। तो 2 मिनट मेडिटेशन के साथ हम पूरा करेंगे, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। थोड़ा सा पीछे का सपोर्ट छोड़ देंगे। हां जी, रिलैक्स बट अलर्ट, बाहर की सभी बातों से चंद मिनटों के लिए अपने विचारों को समेट ले और पूरी तरह से फुल अवेयरनेस के साथ अपने विचारों को स्वयं पर केंद्रित करिए। ध्यान को एकाग्र करें मस्तक के बीच, जहां तिलक लगाते हैं। अपने आप को देखें, स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। मुझ सितारे का प्रकाश मुझसे मेरे चारों ओर फैल रहा है। I am full of positive energy, और ये एनर्जी मस्तक के बीच चमकते हुए सितारे से निकलकर मेरे ब्रेन के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को पहुंच रही है। महसूस करें द पॉजिटिविटी पूरे ब्रेन में, मेरी ब्रेन का फंक्शनिंग, कनेक्टिविटी बेटर हो रहा है। और धीरे धीरे ये पॉजिटिव एनर्जी मेरी एंटायर बॉडी में पैरों की उंगलियों तक स्प्रेड हो रही है। मेरी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस बहुत अच्छी होती जा रही है। अब धीरे धीरे ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आत्मा और शरीर से निकलकर मेरे इर्द गिर्द फैल रही है। मेरे बाजू वाले को फील हो रहा है द पॉजिटिव एनर्जी। इस पूरे हॉल में पॉजिटिव एनर्जी फैल चुका है। अब इस एनर्जी को अपने घर के सदस्यों तक पहुंचाएं। एंटायर यूनिवर्स को और एक बहुत पावरफुल थॉट, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सबका भला हो। ओम शांति।
बहुत सुंदर गहन अनुभूति। आपने कभी कस्तूरी मृग के बारे में सुना होगा। वह एक ऐसा मृग है जो आम मृग से अलग, उनकी नाभि में एक अद्भुत सुगंध का कुंड है। खुद मृग नहीं जानता और उसी को पाने के लिए पूरे जंगल में वो भागता रहता है। हम मनुष्य भी उन्हीं की तरह सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन चीजों के लिए भागते रहते हैं। कभी पिकनिक में, कभी पार्टीज में, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। लेकिन परमात्मा ने हमें जन्मते ही हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज रखी हुई है, तो इनको पाने के लिए बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अंदर जाने की, जो आज अश्मिता दीदी ने हमें वो रास्ता बताया कि कुछ समय मेडिटेशन अर्थात अपने आप से रूबरू हो जाना, अंदर की क्वालिटीज को उजागर करना, अपने लिए थोड़ा समय निकालना। तो आज का सेशन आपको इन बातों में बहुत मदद करेगा। बहुत सारी समस्या है जो कुछ किए बिना केवल मेडिटेशन के आधार से सॉल्व हो जाती है। आप यहां से जाने के बाद वह अनुभव करेंगे। और एक छोटी सी बात जो इन्होंने बताई थी, कहा था कि आप जब अपने ऑफिसर्स से मिलते हैं तो आपकी भाषा, आपका लहजा कौन सा होता है, और जब आप चपरासी से मिलते हैं तो कौन सा होता है। उन पर एक बहुत सुंदर बात प्रैक्टिकल हुई है। एक सुपरवाइजर था, बड़ी कंपनी में था, और रोज शाम की उनकी ड्यूटी होती थी कोल्ड स्टोरेज रूम आदि चेक करना, बंद करना, फिर जाना। एक बार ऐसे हुआ कि वो कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर गया और किसी ने बाहर से वो दरवाजा बंद कर दिया। अब वहां की ठंडी धीरे धीरे उनके शरीर पर हावी होने लगी। उन्होंने मोबाइल ट्राई किया, फोन नहीं लगा। अब उनके पास दो ही चीज थी, या तो भगवान से प्रार्थना करें और दूसरी चीज थी कि अपनी मौत का इंतजार करे, क्योंकि वो कोई सुपर स्टार की तरह तो था नहीं जो दरवाजा तोड़ देता। वो एक आम इंसान की तरह अंदर धीरे धीरे उनका खून जमने लगा था। उन्हें लगा कि बस अब एंड। और उसी समय कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुला। उन्होंने देखा उनका चपरासी अंदर आया और कहा, सर आप उनको ले गया, उनके लिए जो फर्स्ट एज की आवश्यकता थी वो सब कराया। उसके बाद सुपरवाइजर ने पूछा कि तुम यहां कैसे, तो कहा इस कंपनी में ऑफिसर्स के लेकर के नीचे तक के सभी लोग आते हैं और जाते हैं, उनमें केवल और केवल एक आप हो, जब आते हो तो मुझे पर्सनली गुड मॉर्निंग करते हो और जब जाते हो तो मुझे गुड बाय करते हो। आज मैं सोचने लगा कि सर ने मुझे गुड बाय क्यों नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा आप जरूर अंदर होंगे, मैं ढूंढता हूं, आपके पास पहुंच गया। तो जीवन में एक नजरिया हर एक को समान रूप से रिस्पेक्ट देने का, यह हमारी लाइफ भी बचा सकता है। इन्हीं के साथ पूर्ण करेंगे, ओम शांति।